ये रेडियो नेपाल है। अब मीनू प्रधान से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। लोक आस्था के पर्व छठ को धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं ने ढलते हुए सूर्य को दिया अर्घ्य। नेकपा माओवादी केंद्र ने देश और जनता के हितों के मद्देनजर अभियान को किया है संचालित। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड का कथन। नेकपा माओवादी केंद्र और नेपाल समाजवादी पार्टी के बीच की एकता प्रक्रिया को निष्कर्ष तक पहुंचाने पर बनी सहमति। और भारत के कोटा में दुनिया के सबसे बड़े घंटे से हुआ हादसा, दो की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। देश भर में लोक आस्था के पर्व छठ को धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं ने ढलते हुए सूर्य को तालाब नदी के किनारे पानी में खड़े होकर अर्घ्य दिया। इसके बाद छठ का व्रत रखने वालों के घरों में पूरी रात भजन कीर्तन का आयोजन होगा और फिर सोमवार की सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर निर्जला व्रत का अनुष्ठान सम्पन्न होगा। छठ महापर्व के अवसर पर राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने आज शाम काठमांडू स्थित कमल पोखरी के छठ पूजा स्थल में छठी माता की पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति पौड़ेल ने गुहेश्वरी में निर्मित पूजा स्थल में भी छठी माता की पूजा की। इसी तरह उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव ने भी कमल पोखरी के छठ पूजा स्थल में छठी माता की पूजा अर्चना की। इसी क्रम में प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ और नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा ने भी ललितपुर के कुपनडोल स्थित छठी माता का दर्शन तथा पूजा अर्चना की। काठमांडू घाटी की कमल पोखरी, गुहेश्वरी, गौरीघाट, कुपनडोल लगायत क्षेत्र में छठ पूजा के लिए पोखरी ध्वजा पात और विभिन्न किस्मों की झिलमिल बत्तियों से श्रृंगार किया गया था। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने कहा कि देश और जनता के हित में नेकपा माओवादी ने अभियान की शुरुआत की है। घर घर में माओवादी, जन जन में माओवादी इस विशेष रूपांतरण अभियान अंतर्गत रुकुम पूर्व की पुथा उत्तर गंगा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि भ्रष्टाचार का अंत करने के लिए सरकार ने सार्थक और योजनाबद्ध ढंग से अभियान की शुरूआत की है। उन्होंने कहा कि बहुचर्चित पंचेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही नेपाल और भारत के बीच रहे सीमा समस्या समाधान के लिए भी भारत के प्रधानमंत्री से चर्चा करेंगे। आज ही रुकुम पूर्व मैकोटा में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि जलवायु परिवर्तन में नेपाल की भूमिका नगण्य होने के बावजूद इसके नकारात्मक असर को नेपाल भोग रहा है, इसलिए इन असर के मद्देनजर क्षतिपूर्ति के लिए स्पष्ट रूप से वे अपनी बात रखेंगे। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415 # डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्र और नेपाल समाजवादी पार्टी के बीच एकता प्रक्रिया को जल्दी निष्कर्ष तक पहुंचाने के विषय में सहमति बनी है। आज माओवादी केन्द्र के पार्टी कार्यालय परिसडाणा में हुई दो दलों की वार्ता टोली की संयुक्त बैठक ने ये निर्णय किया। समिति ने दोनों पार्टियों द्वारा उठाए गए वैचारिक और नीतिगत विषयों में विचार विमर्श कर सहमति के आधार पर आगे बढ़ने की सहमति बनी। बर्दिया में बाघ के हमले से एक महिला की मौत हो गई। आज दोपहर घास काटने गई राजापुर नगरपालिका वार्ड नंबर 10 सुकुम्बासी टोल की 25 वर्षीय ममता सुनार की मौत हो गई। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय बर्दिया के प्रहरी नायब उपरीक्षक तुलसीरा अरियाल ने दी। गौरतलब है कि बीते 4 सालों में नेपाल और भारत की सीमाओं पर पड़ने वाले वन क्षेत्र में बाघ के हमले के कारण अब तक 35 लोगों की जान जा चुकी है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के कोटा में चर्चित रिवर फ्रंट पर लगाए जाने वाले 79 टन के घंटे को सांचे से निकालने के दौरान हादसा हो गया है। यह हादसा तब हुआ जब इसे सांचे में ढालकर निकाला जा रहा था। इस हादसे में इसे डिजाइन करने वाले इंजीनियर देवेंद्र कुमार आर्य और एक मजदूर की मौत हो गई। इस घंटे को दुनिया का सबसे बड़ा घंटा होने का दावा किया गया है। दावा किया जाता है कि इस घंटे की आवाज 8 किलोमीटर दूर तक जाती है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद के सभी 5 सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पताल और लाहौर के शेख जायद अस्पताल ठप होने के कगार पर पहुंच गए हैं। यहां इन अस्पतालों के सुचारू संचालन के लिए 11 अरब पाकिस्तानी रुपए देने के वित्त प्रभाग के अनुरोध को संघीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। इस कारण कई कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की नर्सें एक सप्ताह से अधिक समय से वेतन रुकने के विरोध में प्रदर्शन कर रही हैं। इन अस्पतालों की लैब भी जल्द ही पूरी तरह ठप हो जाएंगी क्योंकि टेस्टिंग किट का स्टॉक खत्म हो रहा है। फिल्म न होने के चलते रेडियोलॉजी परीक्षणों को भी अस्वीकार किया जा रहा है। मरीजों को दवाएं तक देने से इंकार किया जा रहा है क्योंकि कंपनियों को निविदा राशि का भुगतान नहीं किया गया है। लाहौर का शेख जायद अस्पताल बुरी तरह प्रभावित हुआ है क्योंकि यह संघीय स्वास्थ्य मंत्रालय के वित्त पोषण से चलता है। आशंका है कि आगामी दिनों में पाकिस्तान की खराब होती अर्थव्यवस्था के चलते आपातकालीन विभाग भी बंद हो सकते हैं। हालांकि आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष के लिए पाकिस्तान की विदेशी ऋण जरूरतों को घटाकर 25 अरब डॉलर कर दिया है। उसे नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बड़ी राहत देते हुए उसमें 3.4 अरब डॉलर की कटौती की है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक आस्था के पर्व छठ को धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं ने ढलते हुए सूर्य को दिया अर्घ्य। नेकपा माओवादी केंद्र ने देश और जनता के हितों के मद्देनजर अभियान को किया है संचालित। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड का कथन। नेकपा माओवादी केंद्र और नेपाल समाजवादी पार्टी के बीच एकता प्रक्रिया को निष्कर्ष तक पहुंचाने पर बनी सहमति। और भारत के कोटा में दुनिया के सबसे बड़े घंटे से हुआ हादसा, दो की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। शुभ रात्रि।